समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के
नाम ने राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम मनोज, एंड अ प्लेजेंट पॉजिटिव मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 26th of March. Let's begin with the headlines, Manoj.
जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों पर 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
उड़ान 2.0, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 के बाद 5 वर्ष के लिए 1800 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत में आव्रजन वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और सुव्यवस्थित करना है।
Government convened an all-party meeting on the West Asia situation at the Parliament House complex in New Delhi last evening. Defence Minister Rajnath Singh chaired the meeting, which was attended by Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S. Jaishankar and other leaders. Talking to media after the meeting, Mr. Rijiju thanked members of all parties who participated, stating that all questions and concerns raised by opposition leaders were addressed by the government. He added that all opposition parties have assured their support for the government in the measures it takes in response to the situation. Congress leaders Mukul Vasnik and Tariq Anwar, CPIM MP John Brittus, Samajwadi MP Dharmendra Yadav and other opposition leaders were also present.
रेलवे ने अपने संचार अवसंरचना को उन्नत करने और कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विस्तारित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि मध्य रेलवे के सभी 5 डिवीजनों में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक मजबूत दोहरे फाइबर संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित कवच 4.0 को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के 548 किलोमीटर के व्यस्त मार्गों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये प्रणाली गंभीर परिस्थितियों में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है और व्यस्त मार्गों पर परिचालन सुरक्षा को बढ़ाएगी। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात के राजकोट और भावनगर डिवीजनों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क का निर्माण भी पूरा किया जाएगा।
The Central Consumer Protection Authority directed hotels and restaurants not to levy additional charges such as LPG charges and fuel cost recovery on consumers. The Central Consumer Protection Authority said it is closely monitoring such practices across the country and any violation will be dealt with appropriately and necessary action will be taken to safeguard the interests of consumers. The authority made it clear that only applicable taxes can be added to the price mentioned in the menu of restaurants and hotels. On consumer grievance redressal, the CCPA said the people who encounter such practices can lodge a complaint on the National Consumer Helpline by calling 1915 or through the NCH mobile app.
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली कल राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में शुरू हो गया। एक सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव दुनिया भर से 130 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन करेगा, जो भारत के वैश्विक सिनेमा कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस महीने की 31 तारीख तक चलने वाले इस महोत्सव में 47 देशों की 130 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 101 देशों से 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चयनित यह फिल्म महोत्सव इसकी वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। महोत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म मेकर ओलिवर लैक्स की ऑस्कर नामांकित रोड फिल्म सीरत से होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संकेत देती है। यह महोत्सव सिंगापुर के निर्देशक तान सीयू की प्रभावशाली फिल्म अमीबा के साथ समाप्त होगा। इस फिल्म महोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहेंगी, जिनमें विकी कौशल, हेमा मालिनी, भूमि पेडनेकर समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। यह फिल्म महोत्सव आने वाले वर्षों में सिनेमाई संवाद, रचनात्मकता और सहयोग के लिए एक गतिशील मंच के रूप में उभरने का लक्ष्य रखता है। सौम्या के साथ अमन यादव।
The first Shillong International Film Festival, SIFF, was officially inaugurated at the State Convention Center yesterday. On the occasion, Meghalaya Chief Minister Shri Conrad K. Sangma, in his address, announced that the state government is planning to set up a film city and a film institute as part of efforts to promote Meghalaya as a major filmmaking hub. He said that the cabinet has already approved the proposal for a film city and a suitable location has been identified. The aim is to build a strong ecosystem that will attract filmmakers and project Meghalaya as a leading destination for film and creative industries in the Northeast, he underscored. He termed the film festival as part of a larger vision to develop a sustainable creative economy in the state.
डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने भाषिणी फॉर सेवा संचालन नामक पहल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भाषिणी सहयोगी कार्यक्रम का हिस्सा है। इस सहयोग का उद्देश्य पेंशन क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय भाषा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भाषिणी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से बहुभाषी डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करना है। ये समझौता PFRDA प्रणालियों के भीतर अनुवाद उपकरणों, बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और ध्वनि आधारित तकनीकों के उपयोग को सक्षम बनाएगा। इससे पेंशन सेवाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता इंटरफेस पर भाषा की सुलभता और संचार में सुधार होने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में पहुंच का विस्तार करना भी है, जिससे पेंशन सेवाएं ग्राहकों और हितधारकों के लिए अधिक समावेशी बन सकें।
The Department of Post Ministry of Communication has exchanged a memorandum of understanding with the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, TRIFED, to empower tribal artisans and promote indigenous products. The Ministry of Communication said that the partnership aims to establish a robust, reliable and cost-effective logistics framework to support the delivery of products sold through TRIFED's e-commerce platform, including the Tribes India e-marketplace.
नौवां फार्मामेड 2026 कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन भारत के औषधि क्षेत्र के भविष्य से संबंधित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संपूर्ण औषधि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। स्वास्थ्य सेवा समानता, विकसित भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच विषय पर आधारित ये कार्यक्रम नियामक सामंजस्य, नवाचार और दवाओं की समान पहुंच सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का औषधि विभाग इसका आयोजन कर रहा है।
President Draupadi Murmu extended greetings to the citizens on the eve of Ram Navami. In her message, President Murmu said that the epic life journey of Lord Ram guides us to follow the path of truth, justice and virtue for a meaningful life. The president urged the citizens to imbibe the teachings of the great sage and take a pledge to serve the nation with thoughts, words and deeds.
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम आज माले में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप बी के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। भारतीय टीम शनिवार को अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से खेलेगी। और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कल हिंदू राव अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों, चिकित्सा अधीक्षक और कर्मचारियों के साथ संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नर्सिंग प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों और कार्य प्रणालियों के अनुरूप ढालकर स्वास्थ्य कर्मियों को स्तर की कुशलता प्रदान की जा सकती है। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली मेट्रो ने रंगमंच कला और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौते के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो NSD को विभिन्न मेट्रो परिसरों में जागरूकता उन्मुख अभियान, रंगमंच आधारित संवाद सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा प्रदान करेगा। इसमें नुक्कड़ नाटक, कहानी सुनाने के सत्र और अन्य प्रारूप शामिल होंगे। इसके साथ ही NSD अपने कार्यक्रमों में दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों की भागीदारी को सुगम बनाएगा और अपनी टिकटिंग प्रणाली को दिल्ली मेट्रो के ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करेगा।
We have news from Bengaluru now. The Karnataka government has urged citizens to ignore rumors about a fuel shortage after reports of people queuing at petrol pumps with bottles and cans. The center has confirmed that fuel stocks are sufficient across the country. According to a press note, authorities warned against panic buying and said petrol pumps will supply fuel only directly into vehicle tanks, not in containers. Storing fuel in unauthorized containers is illegal and poses serious safety risks. The government assured that the fuel supply remains stable and there is no cause for concern. Neuroscientists have created Calm Brain, a digital platform that stores brain data related to major mental health disorders. It helps doctors and researchers study how these diseases start and develop, leading to better diagnosis and treatment. The project is a joint initiative of the Rohini Nilekani Center for Brain and Mind, a collaboration between NIMHANS and NCBS. It was launched by Rohini Nilekani at NIMHANS. It includes data on conditions like addiction, bipolar disorder, dementia, OCD and schizophrenia, using tools such as brain scans and genetic analysis. Experts say it will help tackle India's growing mental health issues.
अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार के साथ कल मुंबई विधानसभा में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त वितरित की। इस योजना के तहत 1,798 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जिससे राज्य भर के लगभग 90 लाख किसानों को लाभ होगा। इस अवसर पर दत्तात्रेय भारणे, उदय सामंत, दादाजी भूसे और राज्य मंत्री आशीष जायसवाल सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुंबई महाराष्ट्र की एक और खबर। महाराष्ट्र महिला और बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संगठनों से आंतरिक समितियां गठित करने और शी बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण करने को कहा है। ये कदम यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी 2013 के कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद उठाया गया है। अब तक 22,000 से अधिक प्रतिष्ठान पंजीकरण करा चुके हैं। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि शेष प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द पंजीकरण पूरा करना होगा, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। South Central Railway has achieved its highest ever freight loading since its formation, hauling 144.244 million tons of goods in the current financial year 2025-26, surpassing last year's record of 144.14 million tons and reaching this milestone a full week before the financial year ends. Coal and cement remain the zone's strongest commodities, largely from Singareni collieries and cement factories in the region. The zone also loaded iron ore, fertilizers, food grains, containers and other goods, reflecting a conscious effort to diversify beyond traditional cargo. General Manager Sanjay Kumar Srivastav congratulated the entire South Central Railway workforce for their commitment and coordinated effort in reaching this landmark.
अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। रामनवमी के उपलक्ष्य में कोलकाता पुलिस अगले दो दिनों तक शहर की विभिन्न सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू करेगी। कल जारी अधिसूचना के अनुसार दूध, ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर सभी मालवाहक वाहनों को आज मध्य रात्रि से शुक्रवार मध्य रात्रि तक, फिर शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कोलकाता पुलिस क्षेत्राधिकार में चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने शहर भर में लगभग 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
Yes. Chennai is expected partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected fog, partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 26 मार्च है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं।
इन 1552 गुरु अमरदास वाज फॉर्मली अनॉइंटेड एज द थर्ड सिख गुरु। ही स्ट्रेंथन्ड द सिख कम्युनिटी थ्रू मेजर सोशल रिफॉर्म्स, एस्पेशली द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द लंगर, प्रमोटिंग इक्वालिटी अक्रॉस कास्ट लाइन्स। इन 1668 बॉम्बे वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी for an annual rent of 10 British pound, marking the beginning of British commercial dominance in Western India. In 1931, New Delhi was officially inaugurated as the capital of British India with its iconic layout designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker. In 1934, the United Kingdom introduced mandatory driving tests, improving road safety amid rising automobile usage. In 1953, Jonas Salk announced successful early results of a vaccine against polio, offering hope against a global epidemic. In 1971, Sheikh Mujibur Rahman declared the independence of Bangladesh, triggering the liberation war. In 1973, the Chipko movement began in Uttarakhand, led by Gaura Devi, symbolizing grassroots environmental resistance.
आज ही के दिन 1974 में लाता गांव हेनवाल घाटी गढ़वाल हिमालय में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के एक समूह ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के आसपास घेरा बना लिया और उन्होंने अपने इस प्रयास से भारत में चिपको आंदोलन का आरंभ किया। 2006 में आज ही के दिन मेलबर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। 2008 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोष में 2,90,00,000 रुपए की हेरा फेरी के मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को गिरफ्तार किया गया। 2008 में ही आज ही के दिन टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। 2008 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के युद्ध बंदियों को रिहा करने के लिए विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत शुरू की।
In 1975, the Biological Weapons Convention came into force, banning biological weapons globally. In 1987, Hyderabad cricket team won its first Ranji Trophy title against Delhi cricket team on first innings lead. In 1989, India's Antarctic mission established Maitri, strengthening its scientific presence in Antarctica. In 1995, the Schengen Agreement came into effect, enabling passport-free travel across much of Europe. And in 2000, Vladimir Putin was elected president of Russia, marking the beginning of a new political era.
और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
Ludwig Beethoven was a German composer and pianist, a crucial figure in the transition between the classical and romantic eras in classical music. He remains one of the most recognized and influential musicians of this period and is considered to be one of the greatest composers of all times. During his life, he composed 9 symphonies, 5 piano concertos, 1 violin concerto, 32 piano sonatas, 16 string quartets, 2 masses and the opera Fidelio. Here's Symphony No. 5 by Beethoven.
आज पुण्यतिथि है आनंद शंकर की। उनका जन्म 11 दिसंबर 1942 को अल्मोड़ा में हुआ था। वे भारतीय गीतकार और संगीतकार थे। वे विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भतीजे थे। इन्होंने अपने जीवन काल में पूर्वी संगीत शैलियों में पश्चिमी संगीत शैली का उत्कृष्ट मिश्रण कर संगीत को एक नया रूप दिया। सन 1990 के दशक के मध्य जब डीजे की संस्कृति का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो आनंद शंकर ने भी डिस्को के अनुरूप संगीत का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने वर्ष 1996 में ब्लू नोट्स के अंतर्गत ब्लू जूस वॉल्यूम 1 नामक नए एल्बम का निर्माण किया था। आनंद शंकर ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले तत्कालीन चर्चित सीरियल ब्योमकेश बख्शी के लिए भी म्यूजिक दिया था।
Robert Lee Frost was an American poet known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about settings from New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Frost's virtues are extraordinary. His rhythms of actual speech, whether it be the road not taken, fire and ice, or nothing gold can stay, and many more, are impeccable. The 1916 poem, The Sound of Trees by Robert Frost, is a lyrical poem about the tension between the human desire for change and the comforting familiarity of staying put. Here is Sound of Trees.
I wonder about the trees. Why do we wish to bear forever the noise of these, more than another noise, so close to our dwelling place? We suffer them by day, till we lose all measure of pace, and fixity in our joys, and acquire a listening air. They're that the talks of going, but never gets away.
आज जन्मदिन है अभिनेत्री मधु शाह का. उनका वास्तविक नाम मधुबाला रघुनाथ मालिनी है. उनका जन्म 26 मार्च 1969 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ है. वे मुख्य रूप से हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. वे फूल और कांटे, रोजा, अल्लारी प्रियुडू, योद्धा और जेंटलमैन जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं.
छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा.
Talking about Roja, Manoj, it won the National Film Award and there is a Tamil version of this song. Let's hear that too.
சிரகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை.
और आज जन्मदिन है प्रकाश राज का. उनका वास्तविक नाम प्रकाश राय है. उनका जन्म 26 मार्च 1965 को बेंगलोर में हुआ है. वे एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है. प्रकाश राज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.
गनी मेरी जान, सोना नहीं, मार देंगे ये लोग, मार. अरे घुर क्या रहा है, जाके कमिश्नर से मेरा डील सेट करना, जाना बात कर, तो जो चाहेगा मैं दूंगा, बस मुझे यहाँ से निकाल देना. सो गया ये जहाँ, सो गया.
Keira Knightley is an English actress. She has been nominated for 2 British Academy, 3 Golden Globe and 2 Academy Awards. She starred in 2003 fantasy swashbuckler film Pirates of the Caribbean, playing Elizabeth Swan, a role that she would reprise in the subsequent films in the franchise. And here is an excerpt from the movie Pride and Prejudice.
And I might as well inquire why, with so evident a design of insulting me, you chose to tell me that you like me against your better judgment.
No, believe me,
I didn't mean... was uncivil, then that is some excuse, but I have other reasons, you know I have.
What reasons?
Do you think anything might tempt me to accept the man who has ruined, perhaps forever, the happiness of a most beloved sister?
आंधी आई जोर शोर से, दालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी. हमने खोला आलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे ये घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी. ये काव्य रचना महादेवी वर्मा की है. आज जयंती है महादेवी वर्मा की. उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था. वे हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री हैं. महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है.
Today's birthday of Larry Page. He is an American businessman and computer scientist who co-founded Google with Sergey Brin. Page is a centibillionaire and among the richest people in the world. Diana Ross is an American singer, actress and record producer. Born and raised in Detroit, Michigan, Ross rose to fame as a lead singer of the vocal group The Supremes, which during in the 1960s became Motown's most successful act. And here is the song Ain't No Mountain High Enough.
Be there in a hurry, you don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough.
आज जयंती है अजीत सिंह वर्मन की। उनका जन्म 26 मार्च 1947 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्हें अजीत वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।